शांति।
ओम शांति।
अव्यक्त मुरली 23 मई 1983। अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हो तो एक सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो। सेवाधारियों से मुलाकात है ये तो। फलों के भंडार इकट्ठा हो गए, इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी, वहां जाकर माया के वश नहीं हो जाना, सदा सेवा में बिजी रहना। मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा और संबंध संपर्क व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा, सदा ही सेवा में बिजी रहना। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहां रहो चाहे कहीं भी जाओ। सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है, सदा के सेवाधारी हो। सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी। जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं। कौन आता है? कौन दूसरे? मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी ही नहीं। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएंगी। ऐसे बहादुर बनकर जा रहे हो, ऐसे तो नहीं वहां जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया। माया पेपर लेगी, वह भी सुन रही है कि यह वायदा कर रहे हैं। जहां बाप है वहां माया क्या करेगी।
अंदर खाली है सब।
शाहू भाई, ऐसा बहादुर बनकर जा रहे हो, ऐसे तो नहीं वहां जाकर कहेंगे आज क्रोध आ गया, आज लोभ मोह आ गया। माया पेपर लेगी, वह भी सुन रही है कि यह वायदा कर रहे। जहां बाप है वहां माया क्या करेगी। सदा बाप साथ है या अलग अलग है। कुमार, अकेले तो नहीं समझते हो। ऐसे तो नहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे। दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा। दूसरा साथी लाएंगे तो उसको सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा, संभालना भी पड़ेगा। ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है। सदा हल्के रहो, सदा युगल रूप हो। दूसरी युगल क्या करेगी, करेंगे। कभी संकल्प आता है कि बीमार पड़ते हैं हो तब आता है। जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो। जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो। तो बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे। कमलेश भाई, बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे जैसे जैसे दूसरा बना गया, बनाकर गया। तो सदा साथ रहना। अकेला हूं नहीं, कंबाइंड हूं। बाप और आप दोनों कंबाइंड हो। अलग कोई कर नहीं सकता, यह चैलेंज करो। चैलेंज करने वाले हो न कि घबराने वाले। अव्यक्त मुरली 23 मई 1983। सेवाधारियों से मुलाकात, विशेष कुमारों से मुलाकात। बाबा कह रहे हैं अगर यज्ञ सेवा सच्ची दिल से करते हैं तो एक सेकंड का भी बहुत फल है। आप लोग तो कितने दिन सेवा में रहे हो तो फलों के भंडार इकट्ठा हो गए, इतने फल जमा हो गए जो 21 पीढ़ी तक वह फल खाते ही रहेंगे। सेवाधारी, वहां जाकर माया के वश नहीं हो जाना। यहां जब तक है तब तक बहुत अच्छी स्थिति है कई आत्माओं की। जैसे संसार में जाते हैं तो उधर का प्रभाव चालू होता है। सदा सेवा में बिजी रहना। कल पढ़ा था ना, चांस। सेवा के लिए चांस की कोई आवश्यकता नहीं है, चांस ही चांस है। सेवा केवल एक ही प्रकार की सेवा नहीं है। केवल ज्ञान सुनाना या स्थूल सेवा करना ही केवल सेवा नहीं है। बहुत सारी सेवाएं हैं। सदा सेवा में बिजी रहना, मनसा से शुद्ध संकल्प की सेवा, मन में शुद्ध संकल्प लाना ये भी सेवा है, मन में श्रेष्ठ चिंतन करना ये भी सेवा है, स्वयं को ज्ञान से भरपूर करना ये भी सेवा है, स्व सेवा और संबंध संपर्क व वाणी द्वारा परिचय देने की सेवा, सदा ही सेवा में बिजी रहना, चाहे मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क या स्वयं को किसी कला में भरपूर करना, सब सेवा ही है। सेवा का पाठ अविनाशी है, चाहे यहां रहो चाहे कहीं भी रहो, सेवाधारी के साथ सदा ही सेवा है, सदा की सेवाधारी हो। सेवा में बिजी रहेंगे तो माया नहीं आएगी, हर प्रकार की सेवा। स्वामी दयानंद सरस्वती को किसी ने पूछा था कि आप अकेले रहते हो और ब्रह्मचारी हो, काम विकार आपको सताता नहीं है क्या? उन्होंने कहा था कि वो आता है, बहुत बार आता है, मेरा जो कमरा है उसके बाहर आकर खटखट करता है, परंतु मैं हमेशा इतना बिजी रहता हूं कि वो देखता देखता है, और जब देखता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है तो बेचारा थक कर वापिस चला जाता है। इसके लिए स्वयं को बिजी रखना, जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं। भूत प्रेत कहाँ निवास करते हैं? खंडहर, भूत बंगला, जो ऐसा खंडहर होता है जहाँ कोई नहीं रहता है, भीड़ में मार्केट प्लेसेस में भूत प्रेत नहीं मिलते। भूत प्रेत कहाँ मिलते हैं? जहाँ खाली स्थान है, वीरान बिहड़ जंगल बिहड़ स्थान ऐसा कोई जगह हो, वहां पर वो भूत प्रेत रहते हैं। एकांत, उन्हें एकांत बहुत पसंद है। एकांत दो लोगों को पसंद है, फ्रांसिस बेकन करके एक विचारक हुआ है, उन्होंने उसने कहा है सॉलिट्यूड इज लव्ड बाय टू पीपल, एक सेंट दूसरा घोस्ट। एक संत जो है उसको भी एकांत पसंद आता है, और जो भूत प्रेत होते हैं उन्हें भी एकांत पसंद आता है। तो जब खाली स्थान होता है तो दूसरे आते हैं, कौन कौन आते हैं? मच्छर भी आएंगे, खटमल भी आएंगे। इसलिए सदा बिजी रहो तो माया आएगी नहीं। दो तीन दिन पहले हमने चर्चा की थी, कुछ पॉइंट्स निकाले थे कि बिजी किस किस बात में रहे। पहला पॉइंट था मनन, रिवीजन करने में, मुरली जो हो सुनते हैं सुबह उसका रिवाइज करना। कब रिवाइज करना? एक बार दोपहर को, तुरंत भी करना है, एक बार दोपहर एक बार शाम, तो मुरली रिवीजन में बिजी रहना है, और ज्ञान का मनन चिंतन ज्ञान का डिस्कशन करने में बिजी रहना है, और क्लास सुनने में बिजी रहना है। और क्या क्या डिस्कस किया था? योग के भिन्न भिन्न प्रयोग करने में बिजी रहना है, संकल्पों के प्रयोग करने में बिजी रहना है, और अगर कुछ स्थूल कार्य है वो करने में बिजी रहना, लिखने में बिजी रहना, नई नई योग की कमेंट्रीज बनाने में, और कमेंट्री सुनाने में योग की नई नई, और स्थूल सेवा संकल्पों को चेक करने में। तो कुछ स्थूल सेवाएं हैं, सब्जी काटना या इस तरह की जो भी सेवाएं है वहां पर, किसी गरीब बीमार व्यक्ति की सेवा करना, मिलने जाना वो भी एक सेवा है, केवल फूल दे देना वो भी सेवा है, जिसको हम जानते नहीं उसको, जिसको जानते हैं उसको मिलने गए वो दूसरी बात है, जिससे कोई लेना देना नहीं है। कई सारी महान आत्माएं संसार में है वो हॉस्पिटल में चक्कर लगाते हैं और सबको फूल बांट कर जाते हैं, कभी कभी एप्पल देकर जाते हैं, जिनको वो किसी को पहचानते नहीं है, ऐसे ही वो भी सेवा है एक। तो दिन भर किसी ना किसी सेवा में स्वयं को बिजी रखना। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, माया नमस्कार करके चली जाएगी। जो भी संसार में समाज सेवक होते हैं वो भी कई हद तक माया से दूर रहते हैं, वो सारी चीजों में नहीं फंसते है कि जिस चीजों में कोई भोगी विलासी व्यक्ति फंसता है, वो स्वयं को इन सब चीजों से ऊपर रखते हैं। समाज सेवक एक, दूसरे कवि, उनका प्यार प्रकृति से होता है, कविताएं लिखने में होता है, कल्पनाओं में होता है, संकल्पों में होता है, वो और संकल्पों में रमन करते हैं। उनका जगत ही दूसरा होता है, वो इस संसार की मोह माया से थोड़ा ऊपर रहते हैं। कलाकार लोग, वैज्ञानिक, वो भी थोड़ा बिजी रहते हैं, अपने खोज में खोए रहते हैं।
डॉक्टर लोग,
फिलोसोफर्स तो ऐसा बहादुर बनकर जाना। जो लोग यहाँ नहीं रहते और संसार में रहते हैं, वो संसार में रह के क्या करना है उसकी प्लानिंग यहाँ कर सकते हैं। यह सबसे बेस्ट जगह है प्लानिंग करने की, सेवा की। वहां जाकर, सेंटर पर जाकर क्या सेवा करनी है, ऑफिस में जाकर हम अपनी स्थिति को कैसे पावरफुल बनाएं, या घर में यदि कोई डिस्टर्बेंस है किसी व्यक्ति के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, उसके लिए हल क्या है, वो हल सोचने की बेस्ट जगह मधुबन है। यहाँ आकर केवल योग करना यही लक्ष्य नहीं है, यहाँ आकर केवल सेवा ही करते रहना ये लक्ष्य नहीं है, परंतु वहां जाकर क्या प्लानिंग करनी है, वो हम जब बाहर थे, यहाँ पर पहले थे फिर बाहर थे 5 साल कुछ महीने, तो निर्वेर भाई साहब ने हमको कहा था कि यहाँ आकर तुम्हें क्या करना है उसकी प्लानिंग वहां बैठकर करो, यहाँ जब आओगे वहां क्या करना है उसकी प्लानिंग वहां बैठकर पहले से करो। तो
प्लानिंग वहां की टीवी है,
ऐसे तो नहीं वहां जाकर कहेंगे क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, वहां जाकर कहेंगे आज लोभ मोह आ गया, माया पेपर लेगी, वह भी सुन रही है कि यह वायदा कर रहे हैं। कल हम एक भाई का क्लास सुन रहे थे, ब्रदर चार्ली, तो उन्होंने उनकी क्लास में बहुत अच्छी एक बात कही है क्रोध के बारे में। क्रोध के 3 रूप बताए। एक रूप तो क्रोध का वो है कि जो सीधा सीधा क्रोध, जिसमें बड़ी आवाज ज्यादा है और एकदम ही गुस्से में है, वो जिसमें चेहरा लाल लाल हो गया है और हाथ कंप रहे हैं, वो क्रोध। दूसरा जो क्रोध है थोड़ा फाइन है, उससे थोड़ा सा वो है इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, वो भी क्रोध है। सबसे रिफाइनेस्ट क्रोध जो है वो है कोई व्यक्ति पसंद ना आना, वो हमको अच्छा नहीं लगता, उसके पास नहीं जाएंगे हम, वो भी क्रोध का ही सेटल्ड एंगर है। वो सेटल्ड एंगर, वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, हम उसे किसी से बात न करना, वो क्रोध का सूक्ष्मतम स्वरूप है। वो आए तो वो इधर से, हम इधर से, वो बैठा है तो हम वहां नहीं बैठेंगे, हम वहां बैठेंगे, वो दूसरी बात। ये हमारी वजह से बात कर रहे हैं हम, कि हमें वो व्यक्ति पसंद नहीं है, वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगना, ये भी क्रोध का अति सूक्ष्म स्वरूप है। हाँ, जो पहले चैप्टर, वो स्टेप्स है, जो पहले झगड़ा हो गया किसी के साथ, तो उसके बाद में फिर तो वो सामने है तो इरिटेशन होता है, उसकी की हुई हर बात हमें अच्छी नहीं लगती। अगर वही बात कोई दूसरे व्यक्ति ने की है जो हमें पसंद है तो इतना दिल पर नहीं लगेगी, परंतु उसने की, उसने बोला, वो हमें एकदम लगेगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति अगर कहता है तो हमको लगता है ये अभिमान नहीं है, ये अहंकार नहीं है, पर वही सेवा और वही सेवा का वर्णन वो व्यक्ति करता है, अपनी सेवा का वर्णन, तो हमको लगता है ये इसका अहंकार है। परंतु कोई व्यक्ति हमें बहुत प्रिय है और वो कोई सेवा करके आ रहा है और वो उसका कोई वर्णन कर रहा है, तो हमें नहीं लगता ये अहंकार है, परंतु उस व्यक्ति के लिए लगता है ये बहुत अहंकारी है, बहुत अभिमानी है, क्रोधी भी कोई कम नहीं है, सब अवगुण उसमें दिखाई देने लगते हैं। हमारी दृष्टि का केंद्र ऐसा हो जाता है कि सब कुछ उसमें समाया हुआ है, और जिस व्यक्ति में हम आसक्त है, जिस व्यक्ति से हमारा प्यार है, उसके अवगुण अवगुण नहीं दिखते, सब अच्छा ही अच्छा दिखने लगता है, चाहे वो कुछ भी करे, वो भी एक भ्रांति है। तो ऐसे बहादुर बनकर जाना, ऐसे तो नहीं वहां जाकर कहेंगे आज क्रोध आया। एक एक विकार को जीतना लंबी साधना है, काम को जीतना बहुत बड़ी साधना है। लोभ को जीतना बहुत बड़ी साधना है, क्रोध को जीतना बहुत बड़ी साधना है, और सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है अहंकार। चारों जीतने के बाद भी जो रहता है वो अहंकार। आज लोभ मोह आ गया, माया पेपर लेगी वह भी सुंदरी की वायदा करे। जहां बाप है वहां माया क्या करेगी? सदा बाप साथ है या अलग है? यहां से थोड़ा टॉपिक चेंज है। कुमार अकेले तो नहीं समझते हो? ऐसे तो नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? मनुष्य को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है और चाहिए उसे। शादी भी क्यों करता है व्यक्ति?
सुनने वाला नहीं होता।
शादी करने के फायदे प्रभाकर भाई 10 फायदे बताओ। एक भी नहीं? अरे ऐसे मत बोलो। सेवा, सेवा। मैरिज इज द मोस्ट सैक्रेड इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड। मैरिज के बहुत सारे हैं फायदे, इसके लिए तो संसार में इतना उसको श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। अमृत अनुभव से समृद्ध। कौन से अनुभव? एक तो सबसे पहला जो उसका है वो है कंपेनियनशिप, कि कोई कंपेनियन मिल जाता है उसमें, तो वो कंपेनियन के साथ फिर आप, और दूसरा एक शेयर्ड लाइफ, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि उसे हमेशा चाहिए कोई किसी के साथ वो बात करे, किसी के साथ वो बोले, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं, अपने इमोशंस शेयर करे, अपने सुख अपने दुख सब कुछ शेयर करे, तो उसको वो एक साथी मिल जाता है, सुख दुख का साथी, शेयर करने वाला साथी। एक तो ये, दूसरा कंपेनियनशिप, और सेकंड शेयरिंग ऑफ इमोशंस, तीसरा भोजन पानी। ये चलो ये तो उसके लिए नहीं करते है कोई, परंतु वो भी एक है कि एक कमाएगा, एक खाना बनाएगा पकाएगा, एक घर संभालना, ये दो तरीके से, दोनों तरीके से, और स्टेबल स्टेबल फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। देखा गया है कि जो नहीं करते हैं वो अनस्टेबल रहते हैं थोड़ा, इसके बहुत सारे दूसरे पहलू भी है, परंतु स्टेबल फैमिली के लिए मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे और कुछ बुढ़ापे के लिए एक दूसरों का सहारा, क्योंकि किसी का संसार में दूसरी आत्माओं का भरोसा नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि वो लीगल इंस्टीट्यूशन है और लाइसेंस्ड है, तो इसके वजह से थोड़ा वो एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, समाज का भी थोड़ा उसमें प्रेशर रहता है, तो वो एक दूसरे पे जैसे भी है जैसे तैसे एक दूसरे को संभालते हैं, और बच्चों ने भी साथ नहीं दिया तो एक दूसरे को संभालते हैं, तो भी एक है सहारा एक दूसरे का, सपोर्ट, ये भी एक है। और
बीमारी
और नहीं, हमको निगेटिव पॉइंट्स बाद में, पहले वो हम 20 पॉइंट अलग निकालेंगे, पहले 10 पॉइंट एडवांटेजेस निकालो ना। आदर्श पैदा कर सकते हैं, बच्चों को माँ बाप मिलते, एक होती है वन पेरेंट फैमिली, वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वन पेरेंट फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, वो तो इसके लिए स्टेबल फैमिली बच्चों के लिए भी और समाज की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। एक रीति से स्टेबल हो जाती है फैमिली, नहीं तो देखा गया है प्रोस्टिट्यूशन और ये सारी जो है ये बहुत ज्यादा इससे ये हो जाता है, व्याभिचार संसार में बहुत ज्यादा हुआ होता अगर ये नहीं होता तो, द्वापर से अगर बात करें तो अब तक, उसमें से कम व्यक्ति फोकस्ड हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फोकस हो जाता, नहीं तो उसकी बुद्धि भटकती ही रहती है, उसको कोई दूसरा सहारा भी नहीं मिलता है। इसके लिए दुनिया में जैसे कोई युवक व्यसनों के अधीन हो जाता है तो उसकी सबसे पहले शादी कर दी जाती है ताकि वो थोड़ा स्टेबल हो जाए, या थोड़ा उसका बुद्धि, जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाया ना, जब दिखने लगा एकदम पागल जैसे करने लगा है, वो पुजारी था उसके भाई के साथ, वो काली के मंदिर में उसको कुछ कुछ होने लगता था, साक्षात्कार तो कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी भोजन नहीं तो कभी कुछ, तो ऐसे विक्षिप्त अवस्था में जब चला गया तब उसकी माँ को ख्याल आया कि यही समय है उसकी शादी कर दो, तो उसकी बुद्धि थोड़ी ठिकाने में आ जाएगी। तो संसार में भी इस तरह से ठिकाने लगाने का एक साधन समझते हैं। और
विचार शक्ति बढ़ती है, एक लोग विचार
हाँ शेयरिंग, हाँ वो भी बहुत व्यक्ति सीखता है कॉम्प्रोमाइज करना, एक दूसरे स्वभाव का व्यक्ति हमारे साथ आ गया तो वो वहां पर बहुत सारा सीखता है। जैसे महात्मा गांधी ने अपने जीवन के बारे में कहा है कि उनका बचपन से स्वभाव डरपोक था, उसको रात में स्वप्न देखता था तो दिखता था इधर से भूत आ रहा है इधर से सांप आ रहा है, ये स्वप्न दिखते थे। पर जब देखा शादी हो गई तो उसकी जो पत्नी है कस्तूरबा इतनी हिम्मत वाली है कि वो कहती थी मैं ऐसे सांप को पकड़ूंगी, तो उनको एकदम से अंदर से वो बताते नहीं थे क्योंकि वो पति है तो थोड़ा दिखाना पड़ता था कि मैं निर्भय हूँ, परंतु उनको हमेशा रहता था कि ये मेरे से बहुत ज्यादा बहादुर है, तो और वो अंदर से हमेशा उससे सीखने की कोशिश करते थे, परंतु पता था कि मैं बहुत ही डरपोक हूँ मुझे हर वो
लग रही है।
तो वो उससे सीखते थे। तो दूसरा एक पॉइंट है, एक दूसरे से सीखते हैं, ज्ञान की बात नहीं, संसार की बात, ज्ञान की बातें नहीं करते। किस क्या नहीं बिलीव, एक दो पर विश्वास, एक दो पर ट्रस्ट, एक दो पर भरोसा। वो जैसे कहते हैं हर सक्सेसफुल व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति के पीछे एक स्त्री होती है, इस तरह की संसार में बहुत सारी कहावतें हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी ये सारे हैं, आर्थिक फायदे भी होते हैं, दहेज। दूसरा एक होता है शायद मैंने सुना है कि टैक्सेस वगैरह कम हो जाते हैं मैरिड लाइफ में, ऐसा कुछ है, टैक्सेस और वो सारे थोड़े कम होते हैं। हाँ लक्ष्मी आएगी तो गरीबी हट जाएगी, तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है। अभी आ जाओ डिसएडवांटेजेस पर, उसमें दो प्रकार है, एक अरेंज्ड मैरिज एक लव मैरिज। आजकल अरेंज मैरिज थोड़ा आउट ऑफ डेट हो रहा है, आउटडेटेड हो रहा है, काल बाह्य हो रहा है। किसमें? हाँ वो बोल दिया हमने मैरिज में ना। तो अभी है मैरिज्ड, अभी मैरिज जो है उसमें सबसे पहला पॉइंट है फिडेलिटी का, व्याभिचार। क्या इसका भरोसा है कि जिस व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं वो व्याभिचार न करेगा, लॉयल ही रहेगा, ईमानदार ही रहेगा। इंग्लिश में शब्द है फिडेलिटी, एक डिसएडवांटेजेस में। दूसरा फ्रीडम, फ्रीडम खत्म हो जाता है, यहाँ व्यक्ति जहाँ चाहो वहाँ मोटरसाइकिल लेके घूमते रहता है, वहाँ थोड़ा फिर मुश्किल है, आगे स्वतंत्रता वहाँ थोड़ी सी कम हो जाती है, ये सेकंड। तीसरा डिसएडवांटेजेस, कुमार बताओ ना शिवानंद भाई उधर, हाँ बंधन उत्पन्न हो जाता है, नया बंधन। दूसरा और एक है, जिससे शादी की केवल उसी से संबंध नहीं बनता है, उसके माँ बाप और उसके भाई बहन, एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार होता है, उन सब से संबंध निभाना पड़ता है, दूसरा गांव पूरा अपना हो जाता है। तो नेटवर्क जो है वो वहां से, मतलब ऐसा होता कि केवल एक व्यक्ति से निभाओ ऐसा नहीं है, अगर उसके भाई की शादी है, उसके बहन की शादी है और नहीं गए तो उसको कितना बुरा लगता है, और झगड़े होते हैं कि मेरी माँ बाप की तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। तो एक नया नेटवर्क और नए रिलेशनशिप्स और नए बॉन्डेज क्रिएट होते हैं, वो एक पॉइंट है। और खर्चा, खर्चा बढ़ता है, यहाँ जो बाबा ने कहा ना, ऐसे तो नहीं कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, बीमार पड़े तो क्या हुआ, दूसरा साथी याद तो नहीं आएगा, दूसरा साथी लाएंगे तो उसको सुनना भी पड़ेगा, एक्स्ट्रा सुनना पड़ेगा उसकी बातें, दिन भर सुनते रहना पड़ेगा उसकी बातें, खिलाना भी पड़ेगा, उसको संभालना भी पड़ेगा, तो उसको सब कुछ करने पड़ेगा, उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अगर वो रोती है रोता है तो उसको मनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम उसमें जाएगा। और माननी पड़ेगी क्योंकि स्त्रियों के पास एक बहुत बड़ा शस्त्र है उनके पास, अगर नहीं माने तो रोना चालू, फिर मानना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। और डिसएडवांटेजेस
घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता
लड़ाई झगड़ा, अगर दो व्यक्ति एक साथ आ गए, दोनों का व्यक्तित्व अलग है, दोनों के संस्कार अलग है, तो रोज के झगड़े, असंतुष्टता दोनों में, और हाँ संशय अगर है, अगर एक बार संशय का कीड़ा अंदर चला गया, उसको उसकी कोई इलाज ही नहीं है उसका, फिर नो ट्रीटमेंट, चाहे कितना भी समझाओ और सारे प्रमाण प्रस्तुत कर दो कि ऐसा नहीं है, परंतु मानता ही नहीं व्यक्ति, सब चालू हो जाता है फिर, किसको फोन किया, किसको मैसेज किया, किसको मेल किया, किसके साथ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, को लेट क्यों हुआ, हाँ
मोबाइल को लॉक लगा
मतलब वो सब कुछ, वो संशय ऐसा है कि एक बार आ गया तो उससे उस व्यक्ति को मुक्त करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता है, बहुत कठिन है, आए दिन का झगड़ा, असंतुष्टता का भाव। एक दूसरा भी है उसमें, वो है केयर करना एक दूसरे की, एक्स्ट्रा केयर करना, इतनी केयर करना, इतनी केयर करना कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाए। हमको कोई एक व्यक्ति बता रहा था कि एक मूवी आई है कि जिसमें ऐसा है, दो व्यक्ति है जिनको, एक मराठी की मूवी है वो, मुझे नाम भी पता था अभी भूल गया, तो उन्होंने कहा था कि उसमें ऐसा दिखाया है कि दो व्यक्ति है, दोनों को बहुत प्यार है, शादी भी हो गई, परंतु वो जो पत्नी है उसका स्वभाव ऐसा है कि वो इतनी केयर करती है, इतनी केयर करती है, इतनी केयर करती है कि वो इरिटेट हो जाता है उससे। वो अगर कहीं जा रहा है 2 दिन के लिए तो उसको इतनी बड़ी बैग बना के देगी, उसमें उसकी हर प्रकार की चीजें, वो कहता है मैं एक ही दिन के लिए जा रहा हूँ, 2 ही दिन के लिए जा रहा हूँ, पर वो इतनी केयर कि तुमको ये हो गया तो ये लेना, तुमको अगर बीमार पड़ गया तो ये दवाई रखना, इतनी केयर, इतनी केयर, इतनी केयर कि वो एकदम जैसे पागल हो जाता है। वो कहता है मैं, वो एक समय रहता है कि कहता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है, और अभी कहता है कि एक तो मैं खुद मर जाऊंगा या तुमको मार दूंगा। तो वो एक अलग प्रकार का, उसको उसमें शुभ मंगलाष्टक ऐसा कुछ उसका नाम है, शुभ मंगल सावधान या ऐसे कुछ तो उसका नाम है। तो किसी ने हमको बताया था कि ये भी एक अलग प्रकार का समस्या है उसमें। फिर बच्चों की समस्या, बहुत सारा उसमें जो जीवन है वो उसमें हम बंध जाते हैं एक रीति से, और आए दिन नई नई समस्याएं जिसको हमने सोचा भी नहीं था। और भी कोई है पॉइंट? कुमार, कुमारी है? आदर कुमार है, उनको ही पूछो। कई लोग रिलीजियस पर्पस के लिए भी शादी करते हैं कि दोनों साथ में मिलकर ईश्वर की तरफ जाए, वो भी एक कारण होता है। वो तो ज्यादा मुश्किल है फिर, रिलीजियस पर्पस, रोमांस पर्पस, राजकीय विवाह, हाँ वो भी कुछ पहले जमाने में, आजकल वो सब नहीं है इतना, आजकल कम है, आजकल लव मैरिजेस ज्यादा है। अमेरिका में जो स्टडी हुई है उससे पता चला कि 50% अभी जितनी भी मैरिज होती है उन सब मैरिज में 50% लीड्स टू डिवोर्स, 50% जो भी सम टोटल ऑफ ऑल द मैरिजेस अल्टीमेटली 50% उसमें से डिवोर्स होता ही है। और आजकल मैरिज सिस्टम थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है, लिविंग इन रिलेशनशिप वो सब चालू है संसार में। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बाबा पूछ रहे हैं दूसरा साथी लाएंगे तो उसको सुनना भी पड़ेगा, खिलाना भी पड़ेगा और संभालना भी पड़ेगा, ऐसा बोझ उठाने की जरूरत ही क्या है, सदा हल्के रहेंगे, सदा युगल रूप हो, दूसरा युगल क्या करेगा, कभी संकल्प आता है बीमार पड़ते हैं तो हो तब आता है, बीमार हम पड़े तो हमारी सेवा कौन करेगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है कुमारों के जीवन में, एक तो बीमारी और दूसरा भोजन। अच्छा वो एक भोजन बनाना, बर्तन मांजना, वो सब आ गया उसमें, सब्जी लाना मार्केट से जाके, बहुत सारी चीजें है उसमें, खत्म हो गया तो फिर क्या करे, कहाँ से लाए, बहुत सारी चीजें। जिस संबंध की याद आए उसी संबंध से बाप को याद करो। देखो ये भगवान उवाच है, भगवान को ये सारी जितने हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की वो सब पता है, और वो कह रहा है तो बीमारी में सोए सोए भी ऐसा अच्छा खाना बना लेंगे। बीमार है, कोई बनाने वाला नहीं है, सेंटर बहुत दूर है, या सेंटर से भोजन नहीं मिल पा रहा है, ऐसा अच्छा खाना बनाएंगे जैसे दूसरा बना गया। भरते हुए किसी ने न देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी, गीत है न? तो सदा साथ रहना, अकेला हूं नहीं कंबाइंड हूं, जीवन की हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है। आप और बाप दोनों कंबाइंड हो। अगर कोई अलग कोई कर नहीं सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता, संसार की कोई आत्मा, यह चैलेंज करो। चैलेंज करने वाले हो, चुनौती देने वाले हो, ललकार करने वाले हो, न कि घबराने वाले। मुरली है 23 मई 1983, ओम शांति।